Shortly following after General Conference in October 2007, one of my brethren told me,
अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आत्मिकता से स्थायी बातों के पीछे भागते हैं। अक्टूबर 2007 में जलन सम्मेलन के तुरंत बाद मेरे एक भाई ने मुझसे बताया कि ये लगभग 7 वर्षों पहले मुझे इसका अनुभव एक बार फिर से हुआ था। मैंने उससे सांत्वना दी और उसे बताया कि वे मेरे 7 साल उपवच थे। मैं उस पर विचार करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। मेरे 7 साल की उपवच का अंत आ गया है। पिछले जनवरी मेरी प्रियतम ग्रेस और मुझे फिलीपींस में, जहां एक बड़ा तूफान और एक बड़ा भूचाल आने से तबाही मच गई थी, मैं आकर सदस्य से भेंट करने का कार्य दिया गया था। हम आनंदित हुए क्योंकि कार्य सौंपा गया हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर था और हमारे प्रिय स्वर्ग में पिता के दयालुता और महिमा का एक विधान था। ये हमारी उनसे हमारे प्रेम और चिंता करने की कुछ व्यक्तिगत संपत्ति की नजदीकियों को प्रदान करता है। बहुत से सदस्य जिनसे हम पहले अभी भी अस्थायी टेंटों, कम्युनिटी सेंटरों, गिरजाघरों के सभा ग्रहों में रह रहे हैं, जिन घरों से भेंट करने गए थे कि छत या तो आधी है या पूरी ही छत नहीं है। लोगों के पास फिर से शुरू करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। जो कुछ थोड़ा था वह बह गया, तथापि थोड़ी सी सहायता जो उन्हें मिली थी के लिए वे आभारी से हुए और आनंदित थे। और उनकी पूरी परिस्थिति में होने के बावजूद अच्छे से खुशहाल थे। जब हमने पूछा कि कैसे वह सामना कर रहे हैं, प्रत्येक का जवाब एक साथ गूंजा, हम अच्छे हैं। प्रत्यक्षता से उनका यीशु मसीह में विश्वास उन्हें आशा देता है कि समवित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के बाद घर, टेंट के बाद टेंट, बहन टेक के, और मुझे उन विश्वासी संतों ने सिखाया था, विपत्ति या त्रिसादी की समस्याओं में प्रभु हमें और हमारी प्राथमिकता के रास्ते दोबारा से केंद्रित करता है। अचानक से सभी कुछ, वो सब वस्तुओं की चीजें जिनको पाने के लिए कठिन परिश्रम हमने किए थे, महत्वपूर्ण नहीं रहते। पानी के पास चले जाने के बाद, और एक अच्छी बहन ने इसे इस तरह से रखा है, पानी के पास चले जाने के बाद और अब समय शुरू हुआ है सफाई करने का। और मैंने अपने घर के चारों तरफ देखा और सोचा, हाय, इतने सालों में मैंने इतनी सारी रद्दी को इकट्ठा किया था। मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस बहन को बेहतरीन दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है और इसलिए सावधानी से नियंत्रण लेने लगी कि कौन सी वस्तु की जरूरत है और किन के बिना वह सच में रह सकती है। इन बहुत से वर्षों में कई सदस्यों के साथ काम करते हुए हमने आत्मिक शक्ति का अनुरोध बहुतायात से होते हुए देखा है। हमने दोनों बहुतायात से होते हुए और सामग्री संपत्ति के अभाव को इन विश्वासी सदस्यों के बीच रहते हुए देखा है। जरूरत के परे हम में से बहुत पैसा कमाते हैं और अपने परिवारों के समर्थन करने के लिए दुनिया भर का कुछ सामान मुहैया करते हैं। हमें हमारे अच्छे समय का कुछ भाग और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसका कोई अंत नहीं होता है कि संसार क्या देता है, तथा यह महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पास बहुत है कम को हम पहचान सकें। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आत्मिकता से ज्यादा स्थायी बातों पर के पीछे भागते हैं, हमारा आत्मिकता और अनंत के लिए अनुसरण करना बात की बात हो जाएगी बजाय दूसरों के। दुखद है, यहाँ अधिक से अधिक आधुनिक चीजों को पाने का सुझाव बढ़ता है और अधिक जटिल होता रहता है। हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हम इस पद की ओर खींचे नहीं जाते हैं? नेफी ने यह सलाह दी, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं, उसके पीछे पैसे मत व्यय करो, उसके लिए परिश्रम मत करो। परिश्रम के साथ मेरी सुनो और जिन बातों को मैंने कहा है उनको याद रखो और इसराइल के पवित्र प्रभु के पास आओ और वह खाओ जो कभी नष्ट नहीं होता और ना ही भ्रष्ट होता है, और अपनी आत्मा को इस विलुप्ति में आनंद बनाने दो। मैं आशा करता हूँ हम में से कोई भी उस पर पैसे खर्च करना या परिश्रम करना चाहेगा जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। उद्धारकर्ता ने यहूदियों को और नफाइटियों को दोनों निम्नलिखित शिक्षा दी थी, अपने लिए पृथ्वी पर धन मत एकत्र करो, यहाँ कीड़े और मूर्छा उन्हें बिगाड़ सकते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़े और ना ही मूर्छा बिगड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और ना ही चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। दूसरी जगह में उधारकर्ता ने यह दृष्टांत दिया, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज है। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी भिखारियां तोड़कर उनमें से बनाऊंगा और जहाँ अपना सब अनंत और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब तू कुछ ना तो इकट्ठा कर सकेगा और ना इसको तू ले सकेगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संसारिक धन की सूची घमंड, संपत्ति, वस्तुओं की चीजें, बल और इंसान के गौरव से बनी होती है। ये किसी भी योग्य समय का और आकर्षण नहीं होता है। तो बजाय मैं धन केंद्रित करूंगा उस धन पर जो स्वर्ग में संगठित है। स्वर्ग के कुछ धन क्या है जिसे हम अपने लिए ले सकते हैं? शुरुआत के लिए हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम मसीह समान विश्वास, आशा, इंसानियत और उदारता लाएं। हमें लगातार सलाह दी जाती है कि प्राकृतिक स्वभाव को अलग कर एक बच्चे के समान हमारे लिए उधारकर्ता की चेतावनी है कि उसकी तरह और हमारे स्वर्गीय पिता की तरह निर्दोष बने। दूसरा, हमें अधिक विशेष समय रखने और परिवार के रिश्तेदारी को मजबूत करने का प्रयास करने की जरूरत है। इन सब के बाद परिवार परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। ये इकाई समय और आनंद के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, दूसरों की सेवा करना मसीह के अच्छे अनुयायी का प्रतीक है। उसने कहा कि तुम्हारे जो इन छोटे से भाई में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। चौथा, मसीह के सिद्धांतों को समझना और अपनी गवाही को मजबूत करने का श्रम है जो कि सच्ची खुशी और संतोष लाता है। हमें लगातार मसीह के वचनों को जो धर्मशास्त्र में पाए जाते हैं, जीवित भविष्यवक्ता के वचनों अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो मसीह की वाणी तुम्हें बतलाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं समापन में 73 आयु की एक विधवा की कहानी के साथ करता हूँ जिससे हम फिलीपींस के दौरान मिले थे। जब बहुटोल टापू में भूकंप आया था, घर के जिस उसने और उसके मृत पति ने भूमि के टुकड़ों पर कठिनाई से बनाया था, ने उसकी बेटी और पोते को मार डाला था। अब अकेली है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। उसे कपड़े धोने का काम शुरू किया है और पहाड़ी के ऊपर एक नीचे पानी लेने के लिए कोई दफा आती है। जब हम उनसे मिले थे वह तब टेंट में ही रहती थी। ये उसके शब्द है, एल्डर मैंने सब कुछ ग्रहण किया है जिससे मुझे प्रभु गुजरना चाहते हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है, मेरे पास मंदिर संस्कृति का धन है और उसे मैं अपने लिए नीचे रखती हूँ। कृपया जानिए मैं पूरा दशमांश अपने कपड़े धोने की कमाई से देती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं गवाही देता हूँ कि हमारी प्राथमिकता प्रवृत्ति झुकाव अभिलाषा भूख और आवेश का हमारे अगली संपत्ति से सीधा संपत्ति होता है। हमेशा उधारकर्ता के वचनों को याद रखना चाहिए क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगे रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।